भूवस्तुतो पशुपाल सम्मतो काश्चरयन्तो सखिभि समं पदेर् वृन्दावनं पुण्यमति कृतु
कहा कि जब भी बलराम और कृष्ण पौगंडा एज यानी 6 से 10 साल के हो गए, जब वह वृंदावन में निवास कर रहे थे, तो उस समय व्रजवासी ने यह निर्णय किया कि अभी वो गोचारण का कार्य संभाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों भाई कृष्ण और बलराम जो वृंदावन में लीला कर रहे थे अपने गोपाओं के साथ, और ब्रजभूमि जो थी वो उनके चरण चिन्हों से सुशोभित हो गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि उनके जो गोप सखा है, कि अघासुर ने उनको अपने मुंह के अंदर लिया था, और बलराम जी है वो बच्चों को चुरा लेते हैं, बाद में उनको बालकों को प्रोत्साहित करना, तो इसलिए भगवान जो है सबको तालवन में ले जाते हैं, वहां पर बहुत सुंदर मीठे फल उनको खाने मिलते हैं। और इस समय वर्णन है कि अभी भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य शरीर था वो अभी धीरे धीरे आयु और बल में उन्होंने निर्णय किया कि अभी कृष्ण जो है वत्सपाल से पशुपाल या गोपालक ये स्तर पे आ सकता है। अभी वो जो है बड़े बछड़े बैल और गाय इनका देखभाल कर सकते हैं। वात्सल्य प्रेम में होने के कारण नंद महाराज जो है हमेशा सोचते थे कि भगवान अभी भी बहुत छोटे हैं और वो बड़े गाय और
महात्म्य में वर्णन है कि 8वां दिन जो है
अष्टमी
कार्तिक महीने के, उसको
अधिकारी गण जो है गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन से भगवान वासुदेव जो वत्सपालक थे अभी पशुपालक बन गए। यहां पर पद करके ये जो शब्द है तो उसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने चरण चिन्हों से व्रजभूमि सुशोभित कर रहे थे। भगवान स्वयं जो है किसी प्रकार के पादुका या चप्पल नहीं डालते, वो बिना कुछ चप्पल पहन के व्रज में घूमते हैं। और ये जो चीज है गोपियां थे उनको काफी चिंताजनक थे कि उनके बहुत सुकमल जो चरण कमल है वो व्रजभूमि के कंकड़ों से पत्थरों से जो है उनको ठेस पहुंच सकती है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु भ्रश्रा कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है जिसमें वर्णन किया है कि अभी भगवान श्री कृष्ण ने उनको नंद महाराज और ब्रजवासी है गाय का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। तब ऐसा होता है कि भगवान जो है जो सामान्य बालक से अलग है और उनका आयु भी जो है वो जल्दी से जल्दी बढ़ता है। कृष्ण जो है किस प्रकार से जल्दी उनका आयु बढ़ता है उसमें आप संकेत भागवत में दिया है कि जब भी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही उनका नामकरण विधि होता है तत्पश्चात वो अपने रांगना जो क्रॉवलिंग बोलते वो करना चालू कर देते हैं और कुछ समय पश्चात जो है कुछ महीने के है तो वो चलना भी आरंभ कर देते हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कुछ क्षण में दोनों जो है वो अपने पैरों से गोकुल के भूमि में घूमना आरंभ कर देते। मगर जैसे ही ब्रजवासी देखते कि गोकुल के अंदर बहुत दानवों का विपत्ति आ रहा है तो उस कारण क्या करते हैं वो लोग वृंदावन निकलते हैं। और वृंदावन आने के बाद थोड़े बड़े होने के बाद भगवान श्री कृष्ण के मन में ये इच्छा उत्पन्न होती कि मैं अभी वत्स जो है छोटे बछड़े इनकी रखवाली करूं। तो वो भी भागवत में वर्णन है कि कैसे उनको ये जिम्मेदारी दी कि जैसे वो छोटे बछड़े जो है उनका देखभाल कर सकते थे। तो उसमें ऐसे है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण है माता से दूध पीने का बंद कर देते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे उनका कुमार जो एज है वो समाप्त होता है, बाल्य जो एज है वो समाप्त होता है और उसके बाद में कभी कभी यशोदा माता को बिना बताए खेलते खेलते छोटे कृष्ण बलराम जो है उन नंद महाराज के साथ कभी चुप के वन में चले जाते थे। और फिर आने के बाद जब भी उनको समझ में आता था यशोदा माता की कि कृष्ण बलराम जो है आज पिताजी के साथ वन में चले गए तो फिर यशोदा माता है वो नंद महाराज को डांटती है कि अभी अपना बालक है बहुत छोटा है और वो गाय बछड़ों के बीच में लेके जाना उसके लिए सुरक्षित नहीं हो सकता। तो यशोदा माता जो है वात्सल्य प्रेम के कारण ये नहीं देख सकती थी कि उनका बेटा जो है धीरे धीरे आयु में बढ़ रहा है। तो उसमें पौगंडा लीला जैसे शुरू होती है तो इस पौगंडा लीला में जैसे नंद भवन है, नंद भवन के बाजू में ही पावन सरोवर है और उस वहां पर एक स्थान है कि जहां पर यशोदा माता जो है हमेशा भगवान श्री कृष्ण को नहला देते हैं। तभी आयु में बड़े होने के कारण कृष्ण जो है वो संकोचित होते थे कि माता से अभी क्यों स्नान कर ले, अभी हम स्वयं स्नान कर सकते हैं और मेरे दोस्त लोगों के साथ मैं इस पावन कुंड में स्वयं ही तैर सकता हूं। और उसमें यशोदा माता जो है जब भी वत्स का वो मतलब छोटे जो बछड़े, अभी छोटे के बछड़े कैसे है कि जो घर होता है घर के आसपास जो आंगन होता है उस आंगन में ही बछड़े जो है घूमते रहते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि यशोदा माता जो है अपने घर का कार्य करते समय ही वो देखती थी कि कृष्ण जो है दूर दिखाई दे रहे कृष्ण बलराम वहाँ खेल रहे और छोटे बछड़े जो उनके आसपास खेल रहे। तो ये जो है कि यशोदा माता के पूरे नजर के अंदर ही उनको घूमने का परमिशन था। और यशोदा माता को पता था कि अभी उनका बेटा जो आयु में बढ़ रहा है और हृदय में भी उनको समझ में आ रहा था कि अभी वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, मगर उनके बीच हृदय के अंदर एक डर पैदा होता था कि जैसा मेरा बेटा थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो फिर वो बोलेगा कि अभी मैं गाय की रखवाली करूँगा और गाय को संभालूंगा, और वो गाय को संभालने को जाएगा उसका मतलब सारा दिन जो है वो वन में चला जाएगा और फिर मैं उसके साथ रह नहीं सकूंगी। तो ये वास्तव्य था कि उनका एज बढ़ रहा है, मगर यशोदा माता वात्सल्य प्रेम से हमेशा सोचती थी कि नहीं, मेरा बेटा जो है छोटा है और मेरे साथ ही रहना चाहिए। तो एक दिन जो है ये गोपाष्टमी के कुछ दिन पहले नंद महाराज ये देखते हैं कि उनका बेटा जो है कृष्ण जो है वो उनके जो चाचा है या वरिष्ठ गोपगण है उनके साथ कुछ कुछ बातें करते रह रहे। और बहुत बार ऐसे देखते समय फिर उन्होंने आखिर पूछ ही लिया अपने भाइयों को कि आप दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हो रहे, आप क्या मसलत बना रहे हो। तो उस समय उनके जो भाई है वो बता देते कि भाई ऐसा है कि आपके जो बेटे हैं कृष्ण बलराम जो है अभी ये सोच रहे कि अभी हम बड़े हो गए और ये उचित नहीं है कि अभी हमारे पिता जो है वो गोचारण के लिए वन में चले जाए, अभी हम बड़े हो गए तो हम वो जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम है तो हमें ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। सो उसमें जो है नंद महाराज जो है वो राजी नहीं होते, वो कहते हैं कि कैसे संभव है, गाय को चराना मतलब उनको घने जंगल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा तो ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। फिर यशोदा माता है उसके साथ भगवान श्री कृष्ण बातचीत करते हैं। यशोदा माता कहते हैं कि अपने घर में तो इतने सारे नौकर हैं, तेरे को क्यों जाने की जरूरत है वन में गाय लेकर। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, अभी तो मैं बड़ा हो गया, मैं स्वयं जाऊंगा। तो यशोदा माता कहते हैं कि अपने तो हजारों लाखों गैया हैं, आप कैसे संभालोंगे उसको। तो कृष्ण उत्तर देते कि मेरे साथ ये बांसुरी है, बांसुरी के स्वर से ही मैं हजारों गैया को नियंत्रित कर लूंगा। तो यशोदा माता हंस पड़ती है, बोलते कि अभी तक तू बहुत छोटा है, अभी कुछ दिन पहले तो तूने मटका फोड़ा था और तुम्हारे अंदर कुछ ताकत नहीं है, तो कैसे जा सकता है वन में। तो उस समय भगवान उत्तर में देते कि मैं अभी तक छोटा हूं, मेरे पास बल नहीं है, ऐसे आप सोच रहे हैं, मैं इतने दानवों का तो वध किया। तो यशोदा माता और हंसती है, बोलती है अरे तू तो कुछ दिन पहले मिट्टी खाते हुए मैंने तुझे पकड़ लिया और उसके बाद में तू पड़ोसी के घर पे जाके दही मक्खन चुराता है, तो कैसे मैं तुमको ये जिम्मेदारी दूं। मगर क्या होता है कि धीरे धीरे जो वास्तव्य है उसको हमको स्वीकार करना ही पड़ता है। तो फिर एक दिन नंद महाराज और यशोदा अभी समझ में आता है कि अभी इसके आगे इनको हम रोक नहीं पाएंगे, हमको मानना पड़ेगा कि हमारे बेटे जो है अभी बढ़ गए हैं, उनका आयु भी बढ़ गया है और उनका कौशल्य भी बढ़ गया है। तो ऐसे होता है कि जैसे ही आयु बढ़ता है तो अपने आप कई चीज जो है आपको समझ में आती है, तो इसलिए हमको ये वेट करना पड़ता है कि कई चीज़ें जो है वो समझने के लिए कुछ समय की जाने की आवश्यकता होती है, और अगर उचित समय आता है तो वो चीज़ लोगों को तुरंत समझ में आती है। इसलिए पहले के ज़माने में जो वैदिक शिक्षण पद्धति थी तो उसमें ऐसे होता था कि जिस आयु में वो व्यक्ति है उस प्रकार से वो विषय वो सब्जेक्ट उनको सिखाया जाता था और वो जिम्मेदारी उनको दी जाती थी। ऐसा नहीं कि 3 साल के पहले जो है उनको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे वो उस उम्र में समझ भी नहीं आते और जैसे वो बड़े हो जाएंगे अपने आप उनको बहुत सारा चीज़ जो समझ में आ जाती है। तो तो उस हिसाब से फिर नंद माता और यशोदा ने देखा कि भी इनका आयु भी बढ़ गया, इनका कौशल्य भी बढ़ गया है, तो नंद महाराज यशोदा माता से बातचीत करते कि अभी हमको कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उस दिन वह एक अच्छा दिन ढूंढ लेते हैं कि जहां से ये शुभ कार्य का आरंभ हो सकता है, कि जिसमें कृष्ण को ये सम्मान दिया जाएगा कि अभी वो गोपालक बन गए हैं। और उसी दरमियान ऐसे हो जाता था कि जैसे भी बछड़े थे जिनका देखभाल कृष्ण बलराम करते थे, अभी वो भी बड़े हो गए, वो भी अपने माता का दूध नहीं पी रहे थे, उनकी अभी अवस्था थी कि वो जंगल में जाकर घास खाना चाहिए, मगर कृष्ण वन में नहीं जाता है तो वो भी जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और साथ साथ कृष्ण के समय जो उनके आयु के जो बच्चे थे वो भी वन में जाने के लिए इनकार करते, क्योंकि अगर कृष्ण वन में नहीं जाएंगे तो हम भी वन में नहीं जाएंगे। तो उस प्रकार से नंद महाराज अभी रुक नहीं सकते थे, उनको ये जो निर्णय है वो निर्णय लेना ही पड़ा, क्योंकि नहीं तो गाय भी वन में नहीं जा रहे, बछड़े भी वन में नहीं जा रहे, गोपालक भी वन में नहीं जा रहे। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी ये सम्मान उनको दिया जाएगा। तो पहले नंद महाराज और उनके आयु के गोप थे वो जाकर गैया को ले जाते थे, अभी कृष्ण और उनके जो सहअध्यायी थे वो अभी ये गोपालन करना चालू कर देते, क्योंकि कृष्ण भी सोच रहे थे कि अभी मुझे मेरे पिताजी की मदद करना चाहिए। तो उनके मन में ये एक कृतज्ञता की भावना थी और साथ साथ जिम्मेदार रहने की इच्छा थी कि पिताजी का आयु बढ़ रहा है, अभी ये सब संभालने का जिम्मेदारी मेरी है। और उस समय हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है गोचारण करते समय कभी उन्होंने पादुका नहीं पहन लिया था, क्योंकि नैसर्गिक रीति से चलना उन्होंने पसंद किया था। तभी ऐसा है कि तो बहुत बार हमारा कैसा होता है कि हम लोग बड़े महंगे जो बड़े बड़े कंपनी के शूज है पहन लेते हैं, कंसेशन क्या होता है कि वो ऐसे आदत लगता है कि वो किसी एंगल में ही चलता है, मगर अगर बिना कोई चप्पल से हम चलते तो पैर जो है अपने आप जो है अलग अलग एंगल से घूमता है, जिससे हमारे पैर के जो मसल्स है वो मजबूत हो सकते हैं। और साथ साथ अभी कई लोगों ने किताब लिखी है जिसको अर्थिंग करते हैं कि भूमि माता के पर्स से क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकता है वो लिखा है। तो बहुत बार लोग इस प्रकार का वर्णन सुनकर उनको यह आश्चर्य लगता है कि बिना चप्पल के जंगल में घूमना यानी वो गलत चीज है, पर वास्तविक वो अपने हित के लिए होती है। तो उसमें भागवत में वर्णन है कि जो गोस्वामी कहते हैं कि कैसे भूमि जो है कृष्ण के पदचिन्ह से सुशोभित हुई थी, वैकुंठ भूमि को भी इस प्रकार का भाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। तो 19 प्रकार के चिन्ह है कि भगवान के पैर में दिखाई देते हैं, वो एक एक ऊर्ध्व रेखा होती है, उसके बाद जव या बारली होती है, चक्र होती है, छत्र होता है, कमल होता है, ध्वज, अंकुश, व्रज और फिर एक अष्टकोण का वर्णन है। तो ये सारे चिन्ह उनके दाहिने पैर पे दिखाई देते हैं और बाएं पैर के ऊपर शंख, आकाश, एक धनुष जिसको रस्सी लगाई वैसे है, गाय के बछड़े के पदचिन्ह होते हैं, त्रिकोण होते हैं, चार कुंभ होते हैं और अर्धचंद्र और मत्स्य पैर पे ये रहते हैं। तो जो गोस्वामी लिखते हैं कि अभी उनका वजन बढ़ गया और पदचिन्ह की जो रेखाएं थी वो भी बहुत स्पष्ट रूप से हो गई, भगवान श्री कृष्ण जो तभी वर्णन है कि भगवान को माधव कहा जाता है। माधव मतलब क्या होता है कि वो लक्ष्मी के पति है, और वो व्रज में उपस्थित होने के कारण अपने आप से जो व्रज है वो बहुत ऐश्वर्यशाली बन गया था। कि जैसे ऐसा था कि अभी वसंत ऋतु होता है, अभी वसंत ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु खत्म हो गया है ठंड का मौसम चालू हो रहा है। अब ये ऋतु संधि के अंदर आपको दिखाई देता है कि फूल जो है बहुत कम आते हैं, क्योंकि एक फूल का साइकिल खत्म हो गया, दूसरे चालू होने का शुरुआत है। कवि शास्त्र में वर्णन है कि शरद ऋतु होते हुए भी वसंत ऋतु जैसे दिखाई देता है। वसंत ऋतु क्या होता है कि वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार से अभी शरद ऋतु होने के बावजूद भी जब कृष्ण वन में चलते हैं तो सारे वृक्ष जो है वसंत ऋतु के तरह से फल है। और उसमें कैसे थे, गोपालक थे कि बहुत कभी उनका पहला दिन था ये गोचारण करने का। जैसे कई लोगों को जो पहला दिन स्कूल का बहुत अच्छा लगता है, तो वो बहुत खुश थे। और जैसे जंग में जाता है तो जंगल के पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, वो भी कृष्ण का दर्शन आनंदित। और साथ साथ कैसे रहते कि अभी भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होने के कारण सब वृक्ष के वनों में हरा भरा सुगंधित घास जो है अपने आप तैयार हो जाता है। तो इसलिए गोप बालकों को कोई चिंता नहीं थी कि कहाँ पर कौन से जंगल में जाए, कौन से विभाग में जाए कि वहां अच्छी घास मिलेगी। कहीं भी चले जाओ सारा हरा भरा घास अपने आप उपलब्ध है। तो इसलिए गोचारण करना उनके लिए बहुत आसान हो गया। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा टास्क है उसको हमको कंप्लीट करना है। और उसका वर्णन है कि जैसे जो वायु है, तो वायु के अच्छे वायु के क्या लक्षण है, उनकी गति जो है वो ठीक होनी चाहिए। जो वायु जोर से आता है तो हमको वो अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ हो सकती है। तो और तीसरा होता है कि सुगंधित होना चाहिए वायु। तो अभी व्रज में ऐसा वायु बहने लगा था कि जिसकी गति मंद थी वो शीतल वायु थी और साथ साथ सुगंधित भी थी। और जो वृक्ष है वो हमको वास्तविक में धन प्रदान करते हैं, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम ये तीन चीज हम कहते हो, तीनों तो अपने इसमें करके रखते हैं। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि हमको हमेशा वृक्ष का सम्मान करना चाहिए। मनुष्य प्राणी जो है वृक्ष के बिना कारण बहुत ये कर देता है, नष्ट कर देता है। एक झाड़ आप देखो कि उसके आयु में कितने लोगों को फल दे सकता है। तो इसलिए हमको सिर्फ लेने का नहीं सोचना चाहिए, हमको कुछ देने का भी सोचना चाहिए। इसलिए हमको देखते हैं कि हम कुछ भी किसी प्रकार से कटु व्यवहार वृक्ष से करते हैं, मगर वृक्ष जो है हमको हमेशा फल प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी तुरंत सुनिश्चित का एक उपमा देते हैं कि जो कैसे हमको सही। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो वनमाला यानी वन के जो भी फूल है, वन के जो भी पत्ते हैं उसको लेकर अपने आप को सुशोभित करते हैं। द्वारका में उनके जो गहने हैं उनसे ज्यादा जो है आनंद उनको इसमें आता है कि वन के जो नैसर्गिक रीति से जो फूल निर्माण होते हैं वो फूल से अपने आप को सुशोभित करना उनको बहुत अवश्य अच्छा लगता है। फिर विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर कहते हैं कि जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण तो राजपुत्र है, नंद महाराज राजा थे, तो कैसे संभव है कि ये उनका पुत्र है गोचारण करने के लिए वन में चले जाए। तो कहते हैं कि भगवान और यज्ञ जो गव्य के बिना नहीं हो सकता, तो इसलिए उनको ये सिद्ध करना था कि गव्य की ये महात्मा है और उसके बिना यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए वो स्वयं चले जाते हैं। वहां के जो प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर है वो आकर हमने कि एक दिन यानी एक दिन का भी आधा हिस्सा हमने किया, वो वहां पर 3 दिन गोपाष्टमी का महोत्सव होता है। और 3 दिन में क्या होता है कि अलग अलग नए वस्त्र दिए जाते हैं और बच्चों को जो है प्रोटेक्टिव हर्ब्स जो आयु की रक्षा करे ऐसी जड़ी बूटी दी जाती है। और वरिष्ठ जो वैष्णव गण है वो उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये गोपाष्टमी जो है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, तो उसमें उपस्थित जो प्रीस्ट है वो आकर बहुत अच्छे व्रज गीत गाते हैं, गाय के चरण जो है उनको धोकर उनकी पूजा की जाती है, उनको आर्घ्य जो है सम्मान चिन्ह जो है अर्पित किया जाता है, और जो चना है कि जिसको गुड़ का लेपन, गुड़ के रस का लेपन किया है, जैसे मीठे चना है उनको खिलाया जाता है, और सब लोग जो है गाय को नम्रता से वंदन करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो जैसे गाय का सम्मान करते हैं उसी प्रकार से उनका भी सम्मान फिर नंद महाराज जो है काठी जो है लकड़ी सिर पर एक तिलक लगा दी देती है, और फिर माता के मन में अभी ये दुख होता है कि अभी और मैं उनको देख नहीं सकूंगी, तो इसलिए वात्सल्य प्रेम से वो सारा इंस्ट्रक्शन देना चालू करते हैं। बलराम जी को कहती है कि आप हमेशा जो है उनके सामने सुबल को कहती है कि आप उनके पीछे चलते रहो, दम और सुदामा उनको बोलते हैं कि आप उनके बाजू से चलते रहो, में चले जाओ। बलराम जी आश्वासन देते हैं कि हाँ मैं सब सब उनको संभाल दूंगा, और फिर यशोदा माता बलराम जी को कहती है कि उसको धूप में जाने की इजाजत मत दो, फिर ये जो लड़का है शरारती वो तो फल खाने हेतु झाड़ के ऊपर चढ़ेगा ही, तो आप उसको झाड़ पे ऊपर चढ़ने नहीं देना। फिर जिस प्रकार से आंख को ये अपनी आईलिड्स संरक्षित कर पलके जैसे सुरक्षित रखते, इस प्रकार से आपको उसकी देखभाल करना है। फिर यशोदा माता जो है उनको बहुत सारा लड्डू बनाए रखते हैं, वो लड्डू का एक पोटली बना के देती है, बोलती कि जैसे इसको भूख लगेगी उसको आप लड्डू खिलाते जाओ। फिर से बलराम जी है उनको आश्वासित करते हैं कि जरूर जो है मैं इनकी एकदम सावधानी पूर्वक रक्षा कर लूंगा। फिर वो कहती है कि आज पहला दिन है इसलिए आप थोड़ा जल्दी वापस आ जाना, और उसके बाद में वो बोल नहीं सकती क्योंकि आंखों से अश्रु आना चालू हो जाते हैं। फिर कृष्ण बलराम जो है वो भी अपने माता पिता को प्रणाम फिर आगे गोचारण चलने के लिए चलते हैं, और उसमें ऐसा है कि गाय जो है अलग अलग रंग की होती है, अलग अलग लक्षणों की होती है, और उसके अनुसार उनके विभाग किए जाते हैं कि जैसे उनको देखभाल ठीक तरह से किया जाए। तो वो लोग जो है हाथ में लकड़ी लेकर चलते हैं, हालांकि कभी भी जो है केवल अपने आवाज से ही वो सब गाय को आसानी से नियंत्रित करते हैं, कभी उनको लकड़ी इस्तेमाल करने की आवश्यकता। तो गाय के प्रति कृष्ण के मन में बहुत प्रेम होता है, कृष्ण के मन से ही तो गाय की उत्पत्ति होती है, ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है। तो जैसे ही गैया संतुष्ट होती है तो कृष्ण भगवान भी उससे संतुष्ट होते हैं। कृष्ण भगवान जो है प्रेम से गाय को गले लगाते हैं और उनको आलिंगन देते हैं, उनका जो है रक्षण करते हैं, उनको सारा घास वगैरह खिलाते हैं। सब लोग जो है वन में चले जाते हैं और बांसुरी का वादन करते हैं, फिर जो पंछी है पंछी का आवाज का नक्कल करते हैं, फिर मोर के आवाज का नक्कल करते हैं, या जो मधुमक्खी है मधुमक्खी के आवाज का नक्कल करते हैं, और फिर जैसे ही गाय गैया और कुछ दूर जाती थी तो फिर एक मोर के आवाज का नक्कल करके उनको वापस बुलाते थे कि किस प्रकार से वो मोर का आवाज करने से बादल जो है वहां पर इकट्ठा आकाश में हो जाते थे। और फिर जैसे ही वो वापस आते हैं, तो वापस आते समय जो है गाय को, जैसे जो गाय जो है अभी उन्होंने गर्भधारणा की है, जो गाय अभी गर्भधारण करने की इसमें है, या जो गाय ने अब भी बछड़े को जन्म दिया है, या जो गाय है वो बहुत बूढ़ी है, जो गाय अभी दूध नहीं दे रही है, तो ऐसे अलग अलग विभागों में गैया को ये किया जाता है, बांटा जाता है। और साथ साथ जो है बैल जो है, तो बैल को भी इस प्रकार से उनका जो सिंह है, सिंह के लक्षण, उनके कलर जो है वो कलर के हिसाब से, उनके आयु के हिसाब से कितना वजन वो खींच सकते हैं, कौन जो है खेती में कितना अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग उनके विभाग से उनको ये किया जाता है। और ये जो सुंदर दृश्य है कि जैसे कृष्ण बलराम अभी ब्रज में गैया के साथ लौट रहे हैं, तो ब्रजवासी जो है इसका दर्शन कर लेते हैं, और फिर गाय का जो है, अभी जैसे वन में चरकर गाय ब्रज में प्रवेश करती है, तो आने के बाद तुरंत उनको दूध निकाला जाता है। तो एक सोने का बर्तन भगवान श्री कृष्ण को दिया जाता है, और जो रस्सी है वो रत्न से जड़ित रस्सी होती है। फिर ये जो बर्तन है भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों पैर के बीच में पकड़ते हैं और वो दूध निकालना आरंभ कर देते हैं। तो जैसे अब हम देखते कि जैसे दूध निकालते हैं तो काफी फेस जो है फोम वहां पर इकट्ठा होते हैं, और जैसे ही अभी हम आमतौर से क्या करते हैं कि जब भी बछड़े को छोड़ते हैं, जो बछड़े का स्पर्श होता है तो गाय दूध देना आरंभ करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के हस्त का स्पर्श होता था तो गाय तुरंत दूध देना चालू कर देती थी, और साथ साथ बहुत मुक्त मात्रा से दूध देती थी, इतना कि बर्तन से भी जमीन पर ये दूध फैल जाता था। और ये दृश्य देखने के लिए गोपियां जो है चलते थे कि कैसे ब्रजवासी सोचते थे कि अब हमारे जो गोपियां हैं उनके हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि वो सारा दूध जो है ठीक तरह से निकालते नहीं है, दूध कम मात्रा में आ रहा है, तो सबसे जो पुष्ट जो गोपियां हैं वो ठीक तरह से गोदोहन नहीं कर रहे। और यहाँ पर देखते हैं कि कृष्ण जो है बहुत आसानी से प्रचुर मात्रा में दूध निकालते हैं। तो उसमें ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण हर एक जीव का बहुत अच्छा देखभाल करते हैं, हमारे अशांत मन को जो है शांत कर देती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर फिर दूध जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वर्णन है कि गोपाष्टमी के दिन पर कैसे सुबह से लेकर शाम तक ये दिन जो है बीत गया। तो इसलिए हमको बताया गया है कि गोपाष्टमी दिन ये सुबह जो है गैया को नहलाना चाहिए, साफ करके उनको सुशोभित करना चाहिए, उसके बाद वत्स के साथ जो है उसकी पूजा करनी चाहिए, फिर उनको फूल तिलक जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद उनकी आरती कर उनको ताजा हरा भरा घास देना चाहिए, और फिर हमको गैया की परिक्रमा करना चाहिए। और परिक्रमा करने के पश्चात जो गो धूलि है महत्वपूर्ण माना जाता है, गोधूलि यशस्वी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत